विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः सप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् जयतां सुरतौर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतिम् स्मृतिं हृदा विलक्षणा प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भीर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेते जदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिपितीर्षतान्तमन्धम् संसारिणाम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुपयामि गुरूणीनाम् जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ਸੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਸ੍ਰੀ ਸੁਕ ਉਵਾਚ ਅਥ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ್ਮਜੈਰ್ਦੇਵੈ ਪ੍ਰਜੇਸ਼ੈਰਾਵ੍ರತೋಭ್ಯಗಾತ್ ಭವಶ್ಚ ಭೂತಭವ್ಯೇಶೋ ಜಯೋ ಭೂತಗಣೈರ್ವೃತಃ ಇಂದ್ರೋ ಮರುದ್ಭಿರ್ಭಗವಾನ್ ಆದಿತ್ಯಾ ಬಸವಸ್ವಿನೋ ರಿಭವೋಂಗಿರಸೋ ರುದ್ರ ವಿಶ್ವೇಶಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಃ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೋ ನಾಗಃ ಸಿದ್ಧಚಾರಣ ಗುಹ್ಯಕಃ ಋಷಯಃ ಪಿತರಶ್ಚೈವ ಸವಿದ್ಯಾಧರ ಕಿನ್ನರಃ ದ್ವಾರಕಾಮುಪಸಂಜಗ್ಮುಹು ಸರ್ವೇ ಕೃಷ್ಣ ದಿದೃಕ್ಷವಃ ವಪುಷಾ ಯೇನ ಭಗವಾನ್ ನರಲೋಕ ಮನೋರಮಃ ಯಶೋ ವಿತೇನೆ ಲೋಕೇಶು ಸರ್ವಲೋಕಮಲಾಪಹಂ ತಸ್ಯಾಂ ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾಯಾಂ ಸಮೃದ್ಧಾಯಾಂ ಮಹರ್ಧಿಭಿಃ ವ್ಯಚಕ್ಷತಾ ವಿತೃಪ್ತಾಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣಮದ್ಭುತ ದರ್ಶನಂ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನೋಪಗಮೈ ಸ್ವರ್ಗೋದ್ಯಾನೋಪಗಮೈ ಮಾಲ್ಯೈ ಛಾದಯಂತೋ ಜದುತ್ತಮಂ ಗಿರ್ಭಿಃ ಚಿತ್ರಪದಾರ್ಥಾಭಿಃ ತುಷ್ಟೋರ್ಜಗದೀಶ್ವರಾಂ ನತಾಶ್ಮತೇನಾಥ ಪದಾರವಿಂದಂ ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ ಮನೋ ವಚೋಭಿಃ ಜಚ್ಚಿಂತ್ಯತೇಂತರ್ಹೃದಿ ಭಾವಯುಕ್ತೈಃ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಕರ್ಮಯೋರುಪಾಶಃ ತ್ವಂ ಮಾಯಯಾ ತ್ರಿಗುಣಯಾತ್ಮನಿ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ವ್ಯಕ್ತಂ ಸೃಜಸ್ಯವಸಿ ಲುಂಪಸಿತದ್ಗುಣಸ್ಥಃ ನೈತೈರ್ಭವಾನಜಿತಕರ್ಮಭಿರಜ್ಯತೆ ವೈ ಜತ್ವೇ ಸುಖೇ ವ್ಯವಹಿತೇಭಿರತೋ ನವದ್ಯಃ ಶುದ್ಧಿರ್ನೃಣಾಂ ನತು ತಥೇಜ್ಯ ದುರಾಶಯಾನಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರುತಾಧ್ಯಯನ ದಾನ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾಭಿಃ ಸತ್ವಾತ್ಮನಾಂ ಋಷಭ ತೇಜಸಸಿ ಪ್ರವೃದ್ಧಾತ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶ್ರವಣ ಸಂಭೃತಯಾ ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ध्यानस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदो ह्यमानः यः सात्वतैः समभिभूतयात्मवद्भिः व्यूहेर्चितः सवनसः स्वरति क्रमाय जच्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिने सह वीर्गृहीत्वा अध्यात्म योग उत योगिभिरात्म माया जिज्ञासुभिः परम भागवतैः परीष्टः पर्यूष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नि वत्स्रीः या सुप्रणीतममुयार्हरणमाददन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव च मुः स्वर्गाय साधु सुखले स्वितराय भूमा पादः पुनः तु भगवन् भजतामघं नः नस्योत गा वैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानः कालस्यते प्रकृतिपुरुषय परस्य सन्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुहृदयस्थितिसंयमाना अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरदय उत्तम पुरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमान समधिगम्य जयास्य वीर्य धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं तथानुगतयात्मनयाण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तास्तु सश्च जगतश्च भवानधीशो जन्माय योऽर्थ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुसन्नपृषि कपते न लिप्तो यज्ञे स्वतः परिहितादपि बिभ्यति स्म स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र सौंदही पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणै यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न दिभ्यः विवास्तवा मृतकथोदवः स्त्रिलोक्यः पादावनेज सरिता शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गै तीर्थद्वयं शुचिषदस्तौपस्पृशन्ति बादरायणीर्वाच इत्यभीष्टूय विबुधैः शेषः शतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविन्दम् प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तथैवोपपादितम् धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य जदोर्वंशे बिभ्रदरूपमनुत्तमम् कर्माणुद्दामवृत्तानि हिताय जगतो कृतः यानि ते चरितानि मनुष्यः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च करिष्यन्तं जशा तमः जदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुनातिखिलाधार देवकार्यावशेषितम् कुलं च विप्रशापेन नष्ट प्रायमभूदिदम् ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान् श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथ इसके बाद नारद जी द्वारा द्वारका में वसुदेव जी को उपदेश करने के पश्चात ब्रह्मा श्री ब्रह्म आत्मजहि अपने पुत्र के साथ शंकादि आदि के साथ देवहि और देवताओं के साथ प्रजेसहि प्रजापतियों के साथ आवृतः घिरे हुए अभ्यजात आए भवश्च और भव भगवान शिव भूत भव्येशः जो भूतों के प्राणियों के भव्य के दाता है कल्याण के दाता है जयो गए भूत गण ही भूत समुदाय के द्वारा मृतहा गिरे हुए इंद्रहा इंद्र मरुद्भिः मरुद्गणों से गिरे हुए भगवान परम तेजस्वी आदित्यहा अदिति के पुत्र गण वशवः दशुगण अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार ऋभवः ऋभु नामक देवता अंगिरसः अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए देवता रुद्रः रुद्रगण विश्वे विश्व देवता साध्यः साध्यगण च और देवता देवता गंधर्व अप्सरसः गंधर्व अप्सराएं नागः नाग समूह सिद्धचारण गुह्यकः सिद्धचारण गुह्यक ऋषयः ऋषिजन पितरः पितृगण विद्याधर किन्नरः विद्याधर और किन्नरों के साथ द्वारका द्वारकापुरी उपसंजग्मुः बड़ी श्रद्धा और लालसा से गए सर्वे समस्त कृष्ण दुदृक्षवः कृष्ण को देखने की लालसा से वपुषा वपुषे जेना जिससे भगवान स्वयं भगवान सर्व नरलोक मनोरमः नरलोक में मनुष्य समाज में अतिशय रमणीय हैं जशः जस वितेने विस्तारित वा लोकेषु लोकों में सर्वलोक मलापहम समस्त जीवों का मल दूर करने वाला अविद्या सहित पाप को समाप्त करने वाला गत वर्ष यहाँ पर कथा हुई थी नारद जी द्वारका में आए और वसुदेव जी को उन्होंने नौ जोगेश्वरों का संवाद सुनाया। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी यहाँ कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है अपने धाम वैकुंठ लौटने के लिए। षष्ठे ब्रह्मादि स्तुत्वा गंतुम विज्ञापितं हरिम उद्धव प्रार्थयामास स्वधाम नयमामि। और इसी अध्याय में अभी वर्णन है
कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हमें भी अपने धाम ले चलिए। तो भगवान से यह कहने के लिए कि भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट जाए इस प्राकृत जगत से, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ प्रजापति आदि के साथ आए हैं द्वारका, यही कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अथ का अर्थ है वसुदेव नारद संवाद के बाद। आत्मजय देवय प्रदेशय आवृत, ब्रह्मा जी जब द्वारका आए तो उनके साथ कौन कौन लोग थे इसका वर्णन कर रहे हैं। आत्मजय देवय प्रजेशय, ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनके साथ, जिनमें शनकादि का सबसे श्रेष्ठ स्थान है, चार भाई शनकादि और भी नारद जी इत्यादि और मरीचि आदि। ब्रह्मा जी के जो पुत्रगण हैं, जो इस विश्व में अक्षय महान व्यक्तित्व वाले हैं, तो वे पुत्र थे और देव जिनका वर्णन आगे आ रहा है, जिनमें इंद्र प्रधान है, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और प्रजेश प्रजापतियों के साथ, प्रजापतियों मरीचि जी सबसे प्रधान, दक्ष मरीचि आदि, इनसे ब्रह्मा जी आवृत आवृत घिरे हुए। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी केंद्र में है, श्रेष्ठ है, अभ्यगर आए। इसके साथ ही साथ उनके यह सुन करके कि ब्रह्मा जी द्वारका की यात्रा करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव भी अपने भूतों का समुदाय लेकर चलते द्वारका। भगवान शिव के लिए सुखदेव गोस्वामी एक विशेषण दे रहे हैं, भूत भविष्य, भूता नाम प्राणिना प्राणी नाम भव्यस्य कल्याणस्य ईशः दाता, जो समस्त प्राणियों के कल्याण के दाता है उनको भूत भव्येश कहते हैं। ईशः का अर्थ है नियामक दाता, भव्य का अर्थ होता है मंगल कल्याण, भूत भव्येश समस्त भूतों के लिए प्राणियों के लिए क्या मंगल है, भगवान का नाम सबसे बड़ा मंगल है और भगवान की कथा मंगल है और इसके मंत्री हैं भगवान शिव, इसके दाता मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी। भगवान का नाम है सबसे बड़ा मंगल, भगवान शिव इसे जपते हैं। अन्य देवता या अन्य लोग जिस प्रकार संसार के भोगों में रहते हैं, तो इन भोगों का आदर्श सिख करके जीव सुखी नहीं हो सकते। वास्तविक मंगल है जीव का भोगों के त्याग में, भगवान की भक्ति में, और इसके आदर्श हैं भगवान शिव। उनके आचरण में उनकी वाणी में कोई सीख सकता है किस प्रकार भगवान में अपने मन को रखना चाहिए। अच्छा, तो ये यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव को या ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण से कुछ कहना था, तो ये दोनों आ गए होते अकेले, इतनी बड़ी पार्टी लेकर क्यों आ रहे हैं, पूरा विश्व ही आ गया, पूरा देवलोक ब्रह्म लोक से लेकर के स्वर्ग पर्यंत सभी देवता आए और कैलाश से समस्त भूत भी आ गए। इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है, सर्वे कृष्ण विदृक्ष, सभी भगवान कृष्ण को देखने के लिए ललायत। इनमें से और लोग तो पहले देख चुके थे, परंतु देखने के बाद उनकी देखने की लालसा और बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि जो व्यक्ति एक बार देखता है उसे वो कोटि कोटि बार देखना चाहता है, देखने के बाद तृप्ति नहीं होती। और वे जब जा करके अपने घर में धाम में वर्णन करते हैं कृष्ण के सौंदर्य का, तो उनके जितने निवासी हैं वो सब ललायक हो जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए। तो भूत तो होड़ मचा रहे थे, हम चलेंगे, लेकिन भगवान शिव रोके हुए थे कि एक साथ चलेंगे किसी दिन, और फिर नहीं गए। इसीलिए भूत गाय ही वृता, भूत गणों के साथ चले। तो वो कोई जीव ऐसे नहीं है जिनको द्वारका जाना चाहिए भीड़ मचाने के लिए, लेकिन सब कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान शिव साथ में गए। भाव गए भूत गणों से आमृत होकर के, और ब्रह्मा जी गए देव प्रजेश और आत्मजों से भी। जो जिस लोक में है, जैसा जिसका समाज है, पूरे समाज के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह एक सिद्धांत ध्वनित हो रहा है। ऐसा नहीं चुपके से कुछ जाकर भगवान से कह दिया। देखिए जब अवतार कराने की बात आई तब भी ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ गए क्षीर सागर के तट पर, और भगवान से जब यह कहने का अवसर आया कि अब पृथ्वी का भार दूर हो गया और इसके साथ ही साथ विश्व का अनंत काल तक हित करने वाली आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुधा इस जगत में प्रवाहित है, अतः हम ऐसा मानते हैं कि हे नाथ, अब आपको इस प्राकृत जगत में नहीं रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना से आप यह स्वीकार किए, आपके रहने की जगह नहीं। लेकिन हमारी प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से आप यहाँ आए, यहाँ पर युद्ध भी किए कई तरह से, हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको क्लेश होता होगा, अतः आप अपने ध्यान में चाहिए। या जब कहना हुआ तब भी ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ आए। महान पुरुष जो होते हैं उनमें कोई प्राइवेट जीवन नहीं होता। आजकल प्राइवेट शब्द बहुत प्रसिद्ध है, और ज्यादातर साधुओं में देखा जाता है कि लोक मान्यता के अनुसार और किसी समुदाय के धारणा के अनुसार जब यह मान लेते हैं कि पहुंचा हुआ साधु है सिद्ध है, तो अब अकेले रहना चालू करता है, और अकेले यह कह करके कि हमें डिस्टर्ब होता है, लोक विक्षेप होता है, और वास्तविक उसका डिस्टर्बेंस यह है कि उसको सोने में बाधा होती है और लोगों के साथ रहने में तंद्रा और निद्रा में बाधा पड़ती है लोग के कारण, इसलिए अब लोग अपना अलग अलग कुटिया बनाकर उसी में ज्यादा देर तक पड़े रहते। लेकिन हम ऐसा नहीं जानते हैं कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी कभी एकांत में कुटिया में रहे, प्रकट रहते हैं, भगवान के कीर्तन करते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहीं जाते आते हैं तो भी पूरा झुंड के साथ आते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। विश्व के सबसे श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव जो महादेव हैं, ये सब अपने अपने गणों के साथ द्वारका आए। बहुत सुंदर भाव यहाँ व्यक्त है, इस तरह से सबको चाहिए कि अपने समुदाय के साथ भगवान की भक्ति करें। कौन कौन देवता आए, समुदाय वाचक और किसी का नाम बता रहे हैं। इंद्रो मरुद्भिर भगवान आदित्या बसवस्विनौ विभवो अंगिरसो रुद्र विश्वे साध्याश्च देवतः। या तृतीया में न कहकर प्रथमा में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी,
राज देवताओं से घिरा हुआ यहाँ न कहकर स्वतंत्र इंद्र भगवान आदि का वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आवृत है और वृत है यहाँ भी लगाना पड़ेगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार भगवान इंद्र मरुद भी आवृत है या वृत है यह अर्थ है। मरुदगण नित्य मित्र हैं भगवान इंद्र के। देखिए इस प्रकार से देवताओं की भक्ति सूचित हो रही है भगवान के प्रति। द्वारका जाना एक साधारण सी बात कहनी है कि हे नाथ अब आप इस कुत्सित प्राकृत जगत से अपने नित्य सुखमय धाम में चले जाइए, इतना ही कहना है। लेकिन यह कहना मात्र ही प्रयोजन नहीं है, वास्तविक प्रयोजन है भगवान का दर्शन करना, क्योंकि जब तक वे प्राकृत जगत में हैं तभी तक उनका दर्शन हो पाता है। जब तक भगवान इस प्राकृत जगत में रहते हैं तब तक कोई भी जीव उन्हें देख सकता है उनकी कृपा से, लेकिन जब वे अपने प्रकट पर व्योम स्थित धाम में वैकुंठ में चले जाते हैं तो उनकी कृपा होने पर भी उनको देखना कठिन है। तो आएंगे अवतार लेंगे तब ना, इसलिए लगता है कि समस्त देवता एक बार भगवान को आंख भर कर देख लेने के लिए आए। ऐसे बीच बीच में आया करते थे, सप्त सर्व परमेश पुरोगा वेणु गीत में आया था, जुगल गीत में ब्रह्मा जी इंद्र भगवान और शिव जी ये सभी आते थे प्रतिदिन कृष्ण का दर्शन करने ब्रज में। अब जब भगवान द्वारका में रहने लगे तो उस समय भी आते थे, लेकिन अब अंतिम दर्शन है भगवान का इसलिए आते हैं। देखो रे सखी लोचन भरी भरी फेर नहीं राम जी जनकपुर आए। वास्तव में इस प्राकृत जगत के जीवों का विशेष करके पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य असमोर्घ सौभाग्य इस समय होता है जब भगवान यहाँ रहते हैं, उनका दर्शन करना है उनकी वाणी सुनना है सब सुलभ होता है। लेकिन जैसे मैं कहा करता हूँ इस श्लोक में, जैसे पिता स्वयं ही अपनी पुत्री का विवाह ठीक करता है और उसको विदा करता है, और जब पुत्री जाने लगती है ससुराल तो पिता या माता रोने लगते हैं। ये देवता स्वयं ही दुखी है भगवान को यह कहने में कि आप जाइए अपने धाम में, लेकिन फिर भी कहना है। लालसा से आए देखने के लिए हृदय में एक बहुत बड़ा दुख भी है कि भगवान का आप दर्शन नहीं होगा, वो चले जाएंगे अपने धाम, लेकिन इसके साथ ही अब कहना है ही, भगवान को भेजना है विदा देना है। तो भगवान इंद्र मरुद गणों के साथ आए और आदित्य का अर्थ है इंद्र के अतिरिक्त अन्य आदित्य। इंद्र तो उसमें है ही, ये भी एक आदित्य है और जिम्मा का आदित्य के जो पुत्र गण है सब आए। वसव आठो वसु अश्विनव अश्विनी कुमार ये लोग आए तो अपने अपने दलों के साथ आए। ब्रह्मा जी के साथ सारा दल है, उस दल में कई अवांतर दल, आजकल भी दल भी कई दल हो गया होता है। इस तरह से सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी में भी फिर कई कई गुट के देवता चल रहे हैं। जो समूह वाचक के लिए कोई मनोभाव भाव या मत में अंतर नहीं है, संख्या गिनाने के लिए बात कही जा रही है। अश्विनी कुमार अपने अपने गणों के साथ है, रिभु नाम के देवता गण ये अपने साथियों के साथ है, और अंगिरा जी के संतान तो अपने अपने साथियों के साथ, रुद्र और विश्व देवता, साध्य देवता, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यर, जक्षादि, कुबेर जी आदि, ऋषय, पितरह, ऋषिगण, पितृगण, विद्याधर और किन्नरों के साथ सभी आए, तो अर्थ कोई बाकी नहीं रहे, यह अर्थ है। क्या उद्देश्य था द्वारका आने का? कृष्ण दिदृक्षव, कृष्ण को देखने की लालसा से युक्त सवाल। द्वारका उप संजग्म हो, उप और सम दो उपसर्ग लगे। उप का अर्थ है बहुत साजबाज के साथ, भगवान की कीर्ति गाते ही आए, जो आ रहे थे गाते ही आ रहे थे, और सम का अर्थ है सम्यक श्रद्धा। भगवान के धाम में जाना चाहिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य मान करके ये दुर्लभ अवसर हमें मिला है। ऐसा नहीं कि जैसे सब जगह घूम आते रहते हैं वैसे ही धाम में भी जैसे तैसे रह लिया, जाकर चोरी वोरी करके आ, किसी का कुछ चुराया, किसी का कुछ चुराया, वो तीर्थ यात्रा हो। आजकल बहुत तीर्थयात्री जाते हैं ब्रज में, बहुत बहुत प्रकार की बातें सुनी जाती है। लेकिन यहाँ ऊप और सम बहुत सतर्कता और श्रद्धा के साथ जाए। कृष्ण को देखने गए कि कृष्ण के बापू को देखने गए? सुखदेव गोस्वामी की भाषा देखिए, एक बार वे कहते हैं कृष्ण को देखने की लालसा से गए। तो कृष्ण में और उनके बापू में भेद नहीं है, यह यहाँ दिखा रहे हैं। देह देही विभागो यम नेश्वरे विद्यते क्वचित, देह और देह वाला यह विभाग ईश्वर में नहीं है। कृष्ण को देखने की लालसा से गए और वर्णन कर रहे हैं कि वपुषा जैन भगवान नरलोक मनोरमा जसो बीतेने लोक इस सर्वलोक मला पहम। जैन वपुषा, जिस वपु से, जिस नित्य नराकृति स्वरूप से भगवान नरलोक मनोरमा, नर समुदाय के लिए बहुत मनोरम है। वैसे भगवान के बहुत से रूप हैं और वे समस्त जीवों के लिए बड़े आकृष्ट आकर्षक हैं, परंतु उनका जो अपना खास विग्रह है, स्वरूप है नराकार, इस नराकार बपु से भगवान नरलोक में अति रमणीय है। और ऐसे इस प्राकृतिक जगत में देखा जाए तो सजातीय प्रीति बहुत होती है। सजातीय प्रीति का मतलब यह है कि जैसे पशु पशु से प्रेम करते हैं, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करते हैं, पक्षी पक्षी से प्रेम करते हैं। तो मनुष्य किससे प्रेम करेगा? अगर मान लीजिए भगवान से प्रेम करना हो तो भगवान का जो नराकार स्वरूप है उसी से मनुष्य प्रेम करेंगे अभी। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है जेना बपुषा भगवान नरलोक मनोरमा, जिस बपु से, जिस नराकार श्री विग्रह से भगवान नरलोक में मनुष्य लोक में अत्यंत मनोरम, मन में रम जाते हैं, मन जिन में रम जाता है। और जसो बीते लोक, जिस शरीर से मनोरम होकर के और इस लोक में अपने जस का विस्तार किए हैं, जो यश जो कीर्ति समस्त जीवों के अविद्या सहित पाप को नष्ट कर देती है। तो यह बहुत सुंदर वक्तव्य है कृष्ण में, और कृष्ण के वाणी में भेद नहीं है, इसीलिए वहाँ कृष्ण और नीचे बप्पू शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे इस जगत में देह देही विभाग है, देह एक भिन्न वस्तु है, और देह वाला देही जिसे कहते हैं वह भिन्न वस्तु, तो भगवान में देह देही विभाग नहीं, यह देह है और यह देह वाला है, उनका देह ही वे है। देही शब्द भगवान गीता में बार बार बोले हैं, देही देही माने देह वाला, जैसे धनी का अर्थ होता है धन वाला, देही का अर्थ होता है देह वाला। वाला तो हमेशा अलग होगा, इसको समझना बहुत आवश्यक है वैष्णव के लिए। श्रीमद् भागवतम में जहाँ कहाँ इसका बड़ा सुंदर संकेत है, कृष्ण और बापू, बापू शरीर देह, लेकिन वास्तव में इस मनुष्य लोक में भगवान का भी जब वर्णन किया जाएगा तो मनुष्य की भाषा में उसे बोलना पड़ेगा। समस्त प्राणियों की भाषा से भगवान की भाषा भिन्न है, यहाँ तक कि देव लोक में भी वो भाषा लोग नहीं जानते हैं जो भाषा भगवान बोलते रहते हैं। इसी जगत में देखिए चिड़िया की भाषा अलग है ना, मनुष्यों का उससे कोई मेल नहीं, लेकिन वे अपना काम चला लेते हैं, पक्षी अपना काम चला लेते हैं, जो भी चेचा बोल करके उतने से उनका काम चल जाता है। मनुष्य तो अनेक प्रकार के विद्यालय खोले हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तब जाकर के काम चलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी है जो बिना बोले काम चला लेते हैं, जैसे पशु बहुत कम बोलते हैं, लगभग नहीं बोल नहीं कह सकते, सवेरे से शाम तक वे बहुत कम बोलते हैं, है ना। पशु झगड़ा करते समय भी गाली गलौज करके नहीं झगड़ा करते हैं, लड़ लेते हैं लेकिन चुपचाप। उनमें भाषा विकसित नहीं है। मनुष्यों में भी कुछ लोग तो जो सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, वो भी मौनी हो जाते हैं, सरसा चला लेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन मौन नहीं। मैं देखा हूँ मौनी का झगड़ा करते हुए, आंख लाल हो जाती है, नाक से बोलते हैं कुछ है। जीव से नहीं बोलते, और खून खराबी होकर थाना पर पहुंच गए, मौन रिपोर्ट करने लगे थानेदार, तब भी अब मौन नहीं, केवल अब लिख रहे। राजघाट के पास बनारस में देखा मौनी साधु का झगड़ा करते। तो जो भी है, इतने प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, और सबकी अपनी अपनी भाषा है, एक एक व्यक्ति का, एक एक पक्षी का उच्चारण जो है गला, वो एक पर्टिकुलर ढंग का, विशेष ढंग का है, भगवान की अद्भुत विशेषता है। इतने प्राणियों में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, कंठ स्वर और राग आदि भिन्न भिन्न होते हैं, और भगवान इन सबसे विलक्षण है, उनका उच्चारण उनका राग आदि तो कहना ही क्या। वे जो भाषा बोलते हैं दूसरे लोग समझ नहीं सकते, लेकिन जब भगवान मनुष्यों से बात करते हैं तो मनुष्य की भाषा बोलते हैं। देवताओं से बात करते हैं तो देव भाषा में बोलते हैं, क्योंकि भगवान सर्व भाषाविद हैं, कुछ भी उनके लिए अज्ञात नहीं है। तो विशेष करके जब भगवान मनुष्य समाज को अपने बारे में ज्ञान देना चाहते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तो वे अपना जो नित्य नराकृति स्वरूप है उसी को प्रकट करते हैं। और यह निर्विवाद है कि ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, देवता में अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बहुत बहुत अवतार हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप मनुष्य को आकृष्ट किया वह कभी नहीं देखा गया न सुना गया। इसलिए बपुसा जे न भगवान नरलोक मनोरम, जिस बपु से भगवान नरलोक मनोरम, तेन बपुसा भगवान नरलोक मनोरम जसो बितेन, जिस श्री विग्रह से भगवान नरलोक में अति रमणीय है और जिस श्री विग्रह से भगवान ने जस का विस्तार किया, तद अति सुंदरम बपुर वृक्ष वाला, उसी बपु को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए आए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जेन बपुषा नरलोक मनोरम स्तम कृष्णम इति अभेद उक्त्या बपुषः सकाशात जीवस्य जथा भेद तथा न ईश्वरस्य इति ज्ञापितम जदुक्तम देह देहे विभागो यमनेश्वरे विद्यते क्वचित। कृष्ण को देखने के लिए, बपु को देखने के लिए यहाँ अभेद उक्ति कह करके यह दिखाया जा रहा है कि जैसे जीव का देह के साथ भेद होता है, वैसे भगवान का देह के साथ भेद नहीं। और जेन बपुसा नरलोक मनोरम और जेन बपुसा जस बितेन, बितनुते बितनुते है कि बितेन बितेन और बीतानुते भी पाठ भेद है, क्योंकि एक ही बार जस का विस्तार नहीं किए हैं, बारंबार करते हैं। जसो बीतानुते लोके सर्वलोक मनाते, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी का एक बहुत बड़ा संकेत है समग्र मानव समाज के लिए, नरलोक के लिए भगवान श्री कृष्ण है मनोरम, अति सुंदर, उनसे प्रेम करना चाहिए। देवतागण आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान का यह स्वरूप है, नराकार जो स्वरूप है वह देवलोक में नहीं रहता। अभी आप यही देखिए कि ब्रह्मा जी एक देवता है और अन्य लोग जो आए हैं सब देवता है, तो वे लोग पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं और भगवान पृथ्वी पर रखे हुए सिंहासन पर बैठे द्वारका, क्योंकि ये नरलीला कर रहे हैं, तो नर तो भूमि पर रहेगा और देवता ब्रह्मा जी हैं तो वे आकाश में, आकाश में रहते हुए ब्रह्मा जी धरती पर स्थित भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह विचारणीय बात है, ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं के नीचे आकर जमीन पर लौटकर, इसका कारण यह था कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब भगवान नरलीला कर रहे हैं तो इनको नरलीला करने देनी चाहिए और हम लोग देवता हैं तो देवता की मर्यादा न रहे। देवा देवतागण भूमि का स्पर्श नहीं करते, आगे बात आएगी। विशेष रूप से ध्यान देने जो शब्द है, जेन बपुषा भगवान नरलोक मनोरमा, तो उसी श्री विग्रह को देखने की लालसा से आए। ऐसे देवताओं को भगवान का दर्शन सर्वदा सुलभ है, लेकिन उस बपु का दर्शन सुलभ नहीं है जिस बपु से भगवान नरलोक मनोरम है। उपेंद्र आदि का दर्शन तो उन्हें हमेशा होता रहता, भगवान वामन देव का दर्शन स्वर्ग में सदा सुलभ है, यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप से भगवान का दर्शन बलि महाराज आदि को सर्वदा सुलभ है शीतल लोक में, और भी लोकों में भगवान का कोई न कोई स्वरूप घूमता रहता है, विराजमान रहता है। परंतु यह जो नरलोक मनोरम स्वरूप है, यह स्वर्ग में तो शायद ही कम कभी जाता है। माता अदिति को कुंडल देने के लिए, इंद्र को छत्र देने के लिए, भौमासुर का वध करने के बाद भगवान स्वर्ग गए थे, लेकिन उसके बाद उनके स्वर्ग जाने का कोई वर्णन नहीं मिलता। से पाताल लोक में भी गए थे ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाने के लिए, वे यमराज के लोक में भी गए थे अपने गुरु पुत्र को लाने के लिए, घूमते थे, बहुत कम, बहुत थोड़ा अवसर मिलता था। परंतु मनुष्य लोक में तो सदा रहे, जब तक प्रकट रहे अवतार लेकर के, द्वारका में रहे, मथुरा में, वृंदावन में, इस तरह सुलभ। तो मनुष्यों का इस दृष्टि से सबसे बड़ा सौभाग्य है, खास करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का सुनहला अवसर है मनुष्यों को। तो उसी श्री विग्रह का, यह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी अपने समस्त समुदायों के साथ गए। तो तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम हर्दिभि व्यचक्षता वितृप्ताक्षा कृष्णम अद्भुत दर्शनम। महर्दिधि समृद्धाया विभ्राजमाना महान रिद्धि, महद रिद्धि, महारिद्धि, महर्दिधि समृद्धाया, जो महान धन से समृद्ध थी उस द्वारका में, और जो अतिशय देविकमान हो रही थी, चमक रही थी, ऐसी द्वारका में, सत्य द्वारका है, अद्भुत दर्शनम कृष्णम अवितृप्ताक्ष व्यचक्षत। उस परम समृद्ध द्वारका में वे सब गए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, उनको देख। व्यचक्षत बी अचक्षत विशेषेण अचक्षत देख, इसका अर्थ है कि विस्तारित नेत्रों से समस्त देवता या भूत सब भगवान को देखने लगे। कथम भूतम कृष्णम अद्भुत दर्शनम कृष्णम, दर्शन का अर्थ दृश्यता इति दर्शनम श्री विग्रह जस्यतम, यह दर्शन का अर्थ है श्री विग्रह। दृश्यते इति दर्शनम, जो दिखे उसको दर्शन कहते हैं श्री विग्रह, जिनका श्री विग्रह अद्भुत है, ऐसे कृष्ण को देखने के लिए। अद्भुत का क्या अर्थ है? अद्भुत का अर्थ अलौकिक, यहाँ अलौकिक का अर्थ है केवल पृथ्वी के लिए अलौकिक नहीं, भगवान ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए भी वह रूप अद्भुत था। अद्भुत का अर्थ यह है कि सबसे विलक्षण, सबसे अधिक सुंदर, विस्मापनम स्वस्थ सौभगर्भ परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का वह रूप है विस्मापनम स्वस्थ सौभगर्भे, भगवान की सौभग रिद्धि ही विस्मापनम स्वस्थ, भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल देती है। विस्मापनम स्वस्थ भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी विस्मय में पड़ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर कैसे। इस प्रकार से सारा जगत तो विस्मित होता ही है, अद्भुत मानता है, जब चित्त में उल्लास होता है इसको भी अद्भुत कहते हैं, चित्त सुखी हो जाता है देख करके। ब्रह्मा शिवादि देवताओं के लिए तो परम सुख में था ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी वह मुग्ध करता है, और उनके अन्य स्वरूपों को खींच ले अपनी ओर, इसमें तो कहना ही है। इसलिए अद्भुत दर्शन सुखदेव गोस्वामी के सब शब्द हैं कि अद्भुत श्री विग्रह कृष्ण को देखने लगे तो क्या देख करके पेट भर गया, यानी आंखें तृप्त हो गई? नहीं, अवितृप्त अच्छा अवितृप्ति अवितृप्तानी अक्षी जैसा तथा भूता वे देखे भगवान श्री कृष्ण को लेकिन आंखें तृप्त नहीं हुई। देखिए आंखों की गलती, जब इनको आहार दिया गया भगवान का रूप देखने के लिए तरस रहे थे, जब दिया गया दर्शन तो अब तो तृप्त हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये लालची नेत्र मानते नहीं है, भगवान को देखने के बाद और देखने की लालसा पड़ेगा। व्यचक्ष तो देखते थे, सोचते थे अब आंखें तृप्त हो जाएंगी, लेकिन लास्ट तक देखते रहे पर आंखें ज्यों की त्यों अतृप्त रहे, बल्कि देखने के बाद और अधिक प्यास बढ़ गई देखने, चित भरा नहीं, आंखों की लालसा पूरी नहीं थी। तो देखे और इसके बाद ये ब्रह्मा जी से लेकर के और भगवान शिव के साथ जितने भूत गए हैं सबके आंखों के लिए वर्णन किया जा रहा है।